بہتر ہے کہ دو چار لقمے منہ میں ڈال لو پھر چلتے ہیں۔
پہلے تم ان کو آزاد کر دو، تم لوگ بیٹھو اور کچھ کھا لو تاکہ میں ہو آؤں، شاید آج رات اب دارالخلافہ میں گزار لیں گے۔
ہاں ساتھ، کم سے کم یہ شہد کا شربت تو پیتے جاؤ، کچھ تو گلا تر ہو جائے۔
اٹھ جاؤ تم لوگ، آزاد ہو گئے ہو۔
یہ کیا ہو رہا ہے؟
وہ بوڑھا کون تھا؟
شاید سعد ابن ابی وقاص سنی تھا۔
ہاں وہی تھا۔ یہ لوگ کیوں اس طرح کے چلے گئے؟ وہ بڈھا زمین پہ کیوں گر گیا؟ لگتا ہے ہماری خیریت پتہ کرنے آئے تھے۔
کیا سعد بھی معاویہ سے مل گیا ہے؟
نہیں معلوم، لیکن زمین پہ ایسے لوٹ رہا تھا جیسے کہ جان دیتے۔
ہم تو یہاں قید میں ہیں، باہر کیا ہو رہا ہے ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟
سعد ابن ابی وقاص یہاں کیوں آیا تھا؟
امید ہے آپ کا سفر اچھا گزرا ہوگا سردار۔
سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے ابن عمر،
سردار کی مہربانی سے اچھے ہیں۔
جودہ کی کیا خبر ہے؟
میں خبر نہیں، حسن ابن علی کے گھر اور دارالخلافہ کے درمیان آتا جاتا رہتا ہوں اور اس لڑکی کو تسلی دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ اپنے باپ کے مرنے کے بعد بہت غمزدہ ہے۔
کیا اب بھی وہ اپنے ارادے پر قائم ہے؟
کبھی مصمم ارادہ رکھتی ہے اور کبھی نہیں، ایک دن راضی ہو جاتی ہے اور اگلے دن پشیمان۔ اگر امیر کی عنایت اور اطمینان بخش وعدہ ہو تو کام ہو جائے گا۔
اطمینان بخش وعدہ۔
یہ کیا ہو گیا ہے؟
خدا رحمت کرے اس پہ، ایک بڑا سردار تھا، آج دارالخلافہ آیا ہوا تھا اور اس نے وہیں جان توڑ دی۔
بتاؤ سچ بات کیا ہے، حقیقت میں کیا ہوا ہے اس کے ساتھ؟ ابھی ایک گھنٹہ پہلے جب حسن ابن علی کے گھر سے باہر نکلا تو بالکل ٹھیک تھا۔
اس سے زیادہ اس کی عمر نہیں تھی، عمر نے اسے بوڑھا کر دیا۔ کچھ شہد کا شربت پیا تھا اور تم جانتے ہو کہ شہد کا شربت کیا بلا ہے۔ دمشق سے بھیجا گیا شہد ہر ایک تو ہضم نہیں کر سکتا،
خاص کر دمشق کا بھیجا شہد ہو تو۔
ہنس رہے ہو؟ اگر عمر ساتھ دیکھے گا کہ تم اس کی باپ کی میت پر ہنس رہے ہو تو وہ کیا سوچے گا؟ سوچو اس کے ذہن میں کیسی غلط فہمی پیدا ہو جائے گی۔
سلام ہو ام یزید پر، مادر فرزند خلف امیر المومنین،
اور مستقبل کے اسلام ممالک کے فرمان روا۔
امید ہے۔
تمہاری امید کی کوئی ضرورت نہیں، یہ بات یقینی ہے۔ تم ابن عمیر ہو؟
جی بانو۔
تمہاری اس لیے ضرورت ہے کہ ذمہ داری کو اچھی طرح انجام دو۔
بانو میں کوشش کر رہا ہوں۔
یہ کافی نہیں، میں تو صرف جودہ اور تمہارے کام پر نظارت کے لیے آئی ہوں، اس کا کیا حال ہے؟
نہیں کہا جا سکتا کہ تیار ہے، لیکن اگر امیر کی عنایت اور ان کا وعدہ ہو تو اس کو فیصلہ کرنے میں مدد ملے گی۔
امیر کی بات میں خود ہی اس تک پہنچا دوں گی۔ तुम उसे यहाँ ला सकते हो?
नहीं, यहाँ नहीं आएगी।
तो क्या मुझे हसन इब्ने अली के घर ले जा सकते हो?
आपको
जरूरी नहीं है कि कोई जाने, किसी को खबर किए बगैर।
मेरा बाप कहाँ है?
तुम्हारा बाप मुझसे महवे गुफ्तगु था, इसी असना में उसे सांस लेने में जरा दुश्वारी महसूस हुई और शदीद दर्द का एहसास किया। इससे पहले कि तबीब उसके सराहने पहुंचे उसने अपनी जान दे दी।
तुमने मेरे बाप को मार डाला।
फालतू की बात मत करो, मालूम है कि बाप की जुदाई बहुत सख्त हुआ करती है, लेकिन
मुझे यकीन है तुम लोगों ने उसे जहर दिया है।
तुमने खुद देखा कि उसने हमारे खाने को हाथ तक नहीं लगाया।
अलबत्ता मैं तुम्हारी कुछ बातों को एहतमाल देती हूँ। हो सकता है कि सरदार बुजुर्ग अरब मसमूम हो गए हों, लेकिन यहाँ नहीं। तुम्हें ये सोचना चाहिए कि तुम्हारा बाप आखिरी बार किसके घर गया था।
हसन इब्न अली कभी ऐसा नहीं कर सकते। ये तुम लोग हो जो लुमड़ी की चाल चलते हो और कुत्तों की तरह पीछे से हमला करते हो।
ए पिसारे साहब, देखो किससे बात कर रहे हो।
बकवास बंद करो इब्ने ज़िलजोशन। मेरा बाप जब इस महल में आया था तो बिल्कुल सही सलामत था और अब मर गया है। मैं तुम लोगों को उसकी मौत का जिम्मेदार समझता हूँ और मैं सबको बताऊंगा तुम लोगों ने किस तरह से उसे कत्ल कर।
रोक लो उसे, यहाँ से जाने ना दो। समझते हो कि तुम्हें इस महल से जिंदा जाने दूंगी ताकि फितना बरपा करो और लोगों को अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ भड़काओ? साद इब्ने अबी वकास खुद अपनी मौत मरा है, वो हद से ज्यादा दुनिया में जी चुका था और अब इसकी उम्र तमाम हो चुकी है। तुम सबसे यही कहोगे, वरना तुम और तुम्हारे बाप को एक ही जगह दफन कर दूंगी।
ये कौन है जो मुझसे इस तरह बात कर रही है?
ये बानु अगरामी उम्मे यजीद हैं जिनके दामन पुरुतूफत में यजीद इतने माविया ने तरबियत पाई है।
मुझे माफ कीजिए उम्मे यजीद, मेरे बाप की अचानक मौत ने।
मैं समझती हूँ इब्ने साद, लेकिन इंसान को हमेशा अपनी अक्ल पे काबू रखना चाहिए इब्ने साद, और अपनी भलाई और मसलहत नजर में हो। इब्ने साद, भूलना नहीं कि उसके दफन से पहले तुम सबसे कहोगे कि उसके मरते वक्त तुम खुद मौजूद थे और अपनी आंखों से उसे अचानक दम तोड़ते देखा। समझ गए?
اے مدینے کے رہنے والو، یہ اسلام کے عظیم سپہ سالار سعد ابن ابی وقاص کا جنازہ ہے جس کی موت سے ہمارے دل غمگین اور ہماری آنکھیں اشکبار ہیں۔ امیر المؤمنین معاویہ ابن ابی سفیان ان کا بہت احترام کرتے تھے، میں نے بھی گزشتہ شب ان کے احترام کی خاطر انہیں دارالحکومت طلب کیا اور انہوں نے میری دعوت کو قبول کیا، لیکن افسوس کہ آدھی رات کے بعد یہ عظیم شخص اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اور وہ اس حال میں اس دنیا سے رخصت ہوا کہ اس کا بیٹا ابن سعد اس کے سرانے موجود تھا۔ میں اس عظیم سپہ سالار کے فرزند ابن سعد سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ خود آ کر اپنے والد کی موت کی کیفیت کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے گواہی دے، تاکہ دشمنوں کو فتنہ و فساد اور افواہیں پھیلانے کا موقع نہ مل سکے۔
جو کچھ عظیم سردار اور مدینہ کے حاکم نے فرمایا سب ٹھیک ہے۔ میرے باپ نے اپنی طولانی عمر اسلام اور مسلمین کی خدمت میں گزاری، بہت ساری مشکلات اور مشقتیں برداشت کرنے کی وجہ سے وہ بہت بوڑھے اور کمزور ہو چکے تھے۔ ان کی عمر گزشتہ رات تمام ہو گئی اور دعوت الہی پر لبیک کہتے ہوئے دار فانی کو ودا کر دیا، جبکہ تمام اوقات میں ان کے سرحانے موجود تھا اور ان کا سر اپنی آغوش میں لیے ہوئے تھا. خدا ہم سب پر رحمت نازل کرے.
تمہیں مجھ سے کوئی کام ہے؟
ہاں.
یہ عورت کون ہے؟
مجھے نہیں پہچانتی.
نہیں،
مجھے ام یزید کہتے ہیں.
ام یزید، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ معاویہ کا دربار چلاتی ہے؟
یہ ایسی بات ہے جو دشمن کہتے ہیں. امیر خود اپنے دربار پر حاکم ہے، شک نہ کرو.
اس گھر میں کیوں آئی ہو؟
اس لیے کہ امیر کی عنایت اور وعدے کی تمہیں خبر دوں.
میں نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے، اب میں یہ کام نہیں کروں گی.
جودا، ہوشیار رہو، یہ امیر المومنین کی جانب سے تمہارے ساتھ بات کرنے آئی ہیں.
یہ جان لو کہ معاویہ سارے عالم کا خلیفہ اور جانشین پیغمبر ہے. وہ جو چاہتا ہے عین اسلام ہے. جو امیر المومنین معاویہ کے راستے پر نہیں، وہ حق سے دور ہے.
تم نے اس کی خواہش قبول کر کے خود کو شیطان سے دور اور خدا کے قریب کر دیا ہے. اپنے باغی اور سرکش نفس کو مہار کرو. ایسا نہ ہو کہ باطل افکار اور قلبی لگاؤ تمہیں خدا سے دور کر دے.
نہیں، میں نہیں کر سکتی.
امیر المومنین کے فرمان کو نہ ٹھکراؤ.
بیٹی، تمہاری بھلائی اسی میں ہے.
یزید تمہارے وصال سے راضی ہے، اور امیر المومنین نے بھی اس وصال کا وعدہ کیا ہے اور حکم دیا ہے کہ سونا، چاندی، بہشتی باغ، جو تم چاہو تمہارے نام لکھ دوں.
وہ بادشاہ تمہاری طلب میں ہے کہ جس کے ہاتھ میں خدا نے دنیا کے تمام خزانوں کی چابی دے دی ہے. وہ خدا کہ جس نے تمہاری قسمت میں دنیا کے تمام عورتوں کی سرداری لکھ دی ہے. اس دن جب ابا محمد ابو الحسن کے جانشین تھے تو تم ان کے گھر گئی، اور آج جب یزید تخت خلافت کی جانب بڑھ رہا ہے تو تم ان کے گھر جاؤ گی.
تمہیں عرب کی عورتوں کی سردار ہونا چاہیے. لڑکی، اس ستارے کو تمہارے لیے آسمان سے لیا ہے، اسے ٹھکراؤ نہیں، شک نہ کرو.
میں کیسے یقین کر لوں؟
کس چیز کا؟
یہی کہ امیر اپنے وعدے کا پابند رہے گا.
کیا چیز تمہیں مطمئن کرے گی؟
نہیں معلوم. میرے باپ نے کہا کہ وہ امیر کا دوست اور ہم پیمان ہے، اور امیر نے کبھی ان کے ساتھ بدعہدی نہیں کی، لیکن اب تو وہ مر چکا ہے.
اگر امیر رسمی طور پر وعدہ تمہیں لکھ کر دے دیں تو تم قبول کرو گی؟
ابن عمر.
ہاں، تحریری طور پر عہد نامہ لکھا جانا چاہیے.
کوئی عہد نامے کی ضرورت نہیں، تمہیں میری بات پر اعتماد کرنا ہوگا، اور ابھی فیصلہ کرو.
جب تک تحریری عہد نامہ نہیں ہوگا میں کوئی کام نہیں کروں گی.
یہ کام دیر یا سویر انجام پا جائے گا، اچھی طرح سوچ لو، خاص کر اپنی قسمت کے بارے میں. پھر اس دن امیر المومنین کی رحمت اور ان کے لطف کی امید نہ رکھنا. لیکن اگر تم ابھی اس کام کے لیے راضی ہو جاؤ، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ تمہیں اپنے بیٹے یزید کی بیوی کے عنوان سے امیر کے دربار میں لے جاؤں گی اور اپنی حمایت میں رکھوں گی. अब तुम जानो।
तुम बेफिक्र रहो, इससे पहले कि तुम कुछ भी करो मैं उम्मे यजीद से लिखा हुआ अहदनामा ले लूंगा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं।
क्या कोई हादसा पेश आया सरदार जो मुझे इतनी रात को बुलाया है?
मैं खुद भी तुम्हारी तरह बुलाया गया। बानो उम्मे यजीद ने हम दोनों को तलब किया है।
मैंने किसी को इब्ने उमेर के पास भेजा है, लेकिन उसके आने से पहले मैंने सोचा कि तुमसे अपना मतलब वाज़े कर दूं। मैं काफ़ी देर से यहाँ टहल रही हूँ और इस मौजू पर सोच रही हूँ। आज जब मैंने जोदा से बात की तो ऐसा महसूस हुआ कि वो हमारी मुराद पूरी करने पर मुकम्मल आमादगी रखती है, सिर्फ फैसला नहीं कर पाई। इसलिए मैंने गौर किया कि अगर उसे कोई सख्त चोट लगे तो घबरा के जल्दी ही फैसला कर लेगी।
कैसी चोट बानो?
उसके बाप की मौत के बाद कौन उससे ज्यादा करीब है?
और इब्ने उमैर?
ठीक है, अब फर्ज करो कि इब्ने उमैर के साथ कोई हादसा पेश आ जाए।
कैसा हादसा?
वही हादसा जो अशस को पेश आया था, या साद इब्ने अबी वकास के लिए।
उसे मार डालें?
कोई मुश्किल है?
इब्ने उमैर हमारे दोस्तों में से है।
क्या तुम अभी तक अपने गुज़श्ता दोस्तों के वफादार हो? तुम्हें सिर्फ अमीरुल मोमिनीन का वफादार होना चाहिए। तुम्हारी नजर क्या है सरदार?
क्या आपको नहीं लगता कि जोदा हमें उसकी कत्ल का जिम्मेदार ठहराए और हमारी बात मानने से इनकार कर दे?
मुमकिन है हमें मुकसर जाने, लेकिन वो सरपेची नहीं करेगी। वो इक्तदार पसंद और जा तलब औरत है, लेकिन उसके बावजूद बुजदिल भी है। उससे मैंने कहा कि ये मौतें उसी तरह होती रहेंगी जब तक देर या सवेर उसकी नौबत भी आ जाए। बहुत डरी हुई है और अब तक नहीं। ये शहद का शरबत इब्ने उमैर के लिए है, ध्यान रखो। जोदा मौत की वहशत अपने तमाम वजूद में महसूस करना चाहिए, उस वक्त पक्का फैसला कर लेगी। जबकि मैंने उससे यह भी वादा किया है कि यजीद की बीवी बन जाएगी, और मेरा ख्याल है कि यह वादा कारसाज होगा।
क्या वाकई आपका ऐसा इरादा है बानू?
नहीं, हरगिज नहीं। क्या मैं अपने बेटे के लिए ऐसी औरत लाऊंगी जो पहले से अपने शौहर के कत्ल करने का तजुर्बा कर चुकी हो? अच्छा कहो, तुम्हारी नजर क्या है?
अगर बानो उम्मे यजीद यही चाहती हैं तो मुझे कोई परेशानी नहीं है।
हाँ, मसलहत तो इसी में है। मेरी नजर में फिलहाल इस औरत को राजी करने का यही तरीका है।
इब्ने उमैर आना चाहता है।
उसे आने दो।
उसे कहो कि अंदर आए।
मैं समझा कोई हादसा हो गया है जो इतनी रात गए मुझे तलब किया है। जाहिरन कोई जश्न बरकरार है और उम्मे यजीद की मुझ पर भी इनायत हुई है।
हाँ इब्ने उमैर, सोचा कि ये बात अच्छी नहीं होगी कि हम लजीज खाने खाएं और हमारे दोस्त इन लजीज गजाओं से महरूम रह जाएं।
मुझे उम्मीद है कि अल्लाह मुस्तकबिल के खलीफे की महबूब माँ का साया हमारे सरों पर बाकी रखेगा।
पियो इब्ने उमैर, ये शहद का शरबत बहुत मज़ेदार है।
यह शरबत वही शरबत नहीं जिसने कल रात साद इब्ने अबी वक्कास को हलाक कर दिया?
हाँ, उसी शहद का है।
शिमर ने तो कहा था यह बहुत ताकतवर शहद है और साद इब्ने अबी वक्कास का कमजोर जिस्म इसको बर्दाश्त ना कर सका। अब मेरी अजीज बानो बताइए कि आप क्या समझती हैं कि मेरा ज़ईफ और अलील जिस्म इसको बर्दाश्त कर पाएगा?
हाँ, इत्मीनान रखो, हजम कर सकते हो, तुम्हारे मिजाज के मुताबिक है।
बानो, में मर के गिर तो नहीं पड़ूंगा ना।
नहीं डरो, मगर उस सूरत में कि अमीरुल मोमिनीन के दुश्मनों से मिल जाओ, वरना ऐसी सूरत में बेखौफ मैं खुद तुम्हारी जान लूंगी।
आज़ल्ला, खुदा न करे अगर ऐसा दिन आ जाए तो बेशक मैं अपने इन्हीं हाथों से इसी तरह जामे जहर पी लूंगा।
अगर खुदा ने चाहा तो खुल जाएगा, खुल जाएगा।
अभी तक कोई खबर नहीं आई बानो।
ठहरो, सब्र से काम लो। क्या हुआ इब्ने ज़िलजोशन, परेशान लग रहे हो?
नहीं, मैं परेशान नहीं हूं।
क्यों नहीं हो? तुम शायद इस फिक्र में हो कि देर या सवेर तुम्हारा भी यही हश्र हो सकता है। क्यों, कोशिश करो कि तुम खुद को इस फिक्र से निजात दो, वरना सुकून नहीं पाओगे।
बरसों से मैंने सुकून नहीं पाया है।
मैंने सुना है कि अबा मोहम्मद के साथी बड़ी आसानी से मौत का इस्तकबाल करते हैं और मौत से डरते नहीं हैं। क्या यह सही है?
ऐसा ही है, मैंने खुद बारहा यह देखा है।
जानते हो इसकी वजह क्या है?
मैं माफी चाहता हूं बानो, उस वजह को मैं तन्हाई में अपने जहन में दोहराता हूं।
यही कि वो लोग ईमान रखते हैं और तुम नहीं रखते, सही है? लिहाजा हमें भी अपना ईमान कवी करना होगा। अगर हम चाहते हैं कि उन्हें शिकस्त दें तो हमें भी उन्हीं की तरह ईमान रखना होगा।
ईमान किस चीज पे?
किस चीज पे? अमीरुल मोमिनीन और उसके फर्जंद यजीद पर। क्या ये दोनों तन्हा हमारा सहारा नहीं है?
मैं ज्यादातर अमीर की इनायत पे ईमान रखता हूँ।
फिर तो तुम्हें सख्त दिन का सामना करना पड़ेगा शिम्र, हमेशा अजाब में रहोगे। खौफ वो वहशत तो हैरानी तुम्हें कभी चैन से नहीं छोड़ेगी। जानते हो क्यों? इसलिए कि अमीर की इनायत मुख्तलिफ शक्ल में जाहिर होगी, कभी जेवर की शक्ल में, कभी दौलत की शक्ल में, कभी हुकूमत की शक्ल में, اور کبھی اس شہد کے قالب کی شکل میں جو ابن عمیر نے پیا تھا۔
سردار، خبر آئی ہے کہ عروہ ابن عمیر دنیا سے اٹھ گیا۔
ابن عمیر کیسے مر گیا؟ کیا تم نے اسے مارا ہے؟ تم اپنی زندگی کی فکر کرو، موت تو دیر یا سویر سب کو آنی ہے۔ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے، کوشش کرو کہ زندگی سے فائدہ اٹھا لو۔ معاویہ کے محل کی سوچو، یزید کی بیوی بننے کی فکر کرو۔ میرے ساتھ آؤ، تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ اب اس سے زیادہ غور و فکر کرنا مناسب نہیں ہے جودا۔
یہ کام میں نہیں کر سکتی، میں نے اپنا ارادہ بدل ڈالا ہے۔ چاہے تم مجھے کچھ بھی دے دو، یزید کی بیوی بھی اگر بنا ڈالو، میں یہ کام نہیں کر سکتی۔
میں تمہیں حقیقت بتا دوں بانو، میرا خیال ہے کہ شاید وہ یہ کام نہیں کر سکے گی۔
تم واپس جاؤ، میں یہی منتظر رہوں گی۔
منتظر کس کی؟
ایسی چیز کی منتظر جو تمہاری نگاہ میں غیر ممکن ہے۔
Thank you.
بانو بانو
किसी चीज की फिक्र ना करो, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। अब तुम जाओ मेरी बेटी। जानते हो ये औरत कौन थी? जोदा।
कौन जोदा?
अशस की बेटी और हसन इब्ने अली की बीवी।
वो दारुल हुकूमत आ गई?
हाँ, मेहमान थी।
कैसे आपने उसे मेरे घर आने पर आमदा कर लिया बानू? ये काम तो अशस भी ना कर सका।
मुझे अशस के बराबर समझते हो? अब तुम जाओ और अपने आप को तैयार कर लो उस खबर को सुनने के लिए जिसका मुद्दत से इंतजार था। आखिरकार जोदा तस्लीम हो गई है और हसन इब्ने अली के कत्ल के लिए तैयार है।
क्या वाकई ऐसा है?
वो राजी है?
हाँ राजी है। अब जल्द ही बनी हाशिम आजादार होंगे। अब जाओ और उस वक्त के लिए तैयार हो जाओ। समझ गए? मेरी राय है कि मुगैरा और बुसर से, जो कूफा व बसरा के हाकिम हैं, उनसे मदद लो। मुमकिन है कि हसन इब्ने अली के तरफदारों से जंग पर मजबूर हो जाओ।
मैं ये काम नहीं कर सकती। नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकती।
मैं और तुम्हारा बाप मुआविया के करीबी लोगों में से
नहीं, मैं ये काम नहीं कर
तख्त खिलाफत खून के दरिया से इसलिए हासिल नहीं किया कि एक चमड़े के अहदनामे की खातिर किसी के हवाले कर दें।
नहीं,
मुआविया के बाद
मैं ये काम नहीं कर,
यजीद ही तख्त खिलाफत पे बैठेगा।
यजीद तुम्हारे विसाल से राजी
मैं
है
ये काम नहीं
और अमीर المؤمنین ने भी इस विसाल का वादा किया है
मैं ये
और
काम नहीं
दिया है कि सोना चांदी बहिष्टी बाग जो तुम चाहो तुम्हारे नाम लिख
मैं
दो।
मैं ये काम नहीं कर सकती। नहीं,
वो बादशाह तुम्हारी तलब में है कि जिसके हाथ में खुदा ने दुनिया के तमाम खजानों की चाबी दे दी है।
नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकती। ये काम मेरे बस का नहीं। नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकती। नहीं,
ये काम देर या सवेर अंजाम पा जाएगा।
मैं ये काम नहीं,
अच्छी तरह सोच लो।
नहीं,
खासकर अपनी किस्मत के बारे
नहीं
में
कर सकती।
फिर उस दिन अमीर المؤمنین की रहमत और उनके लुत्फ की उम्मीद ना रखना।
इब्न उमर, मैं ये काम नहीं कर सकती। मैं ये काम नहीं कर सकती। नहीं, नहीं।
पानु,
मदद करूंगा। वो शक में पड़ गई है।
उसे खुद फैसला करने दो। अब ये वक्त है कि मैं उसके पीछे जाऊं।
Thank you.
जौदा आई है, फरियाद कर रही है, रो रही है। लगता है कि काम तमाम कर दिया है।
बानो, बानो मुझे छोड़ दे, मैं ये काम नहीं कर सकती, ये काम मेरे बस का नहीं है बानो, मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है बानो, मुझे छोड़ दे, मैं काम नहीं कर सकती बानो, खुदा के लिए मुझे छोड़ दे।
माविया के महल का सोचो, यजीद से शादी का सोचो।
मैं डरती हूँ, मैं काम नहीं कर सकती।
तुम्हें ये काम करना पड़ेगा जोदा, अच्छे दिन तुम्हारे इंतजार में है, समझा करो, डरो नहीं, हिम्मत से काम लो, अपने आप को संभालो, क्यों इतना घबरा रही हो जोदा? यजीद का सोचो, माविया के महल का सोचो और यजीद से शादी का सोचो। तुम अरब की औरतों की सरदार हो जाओगी, क्यों रो रही हो? महल की अय्याशी का सोचो, कैसी जिंदगी गुजारोगी वहाँ?
देखो, हुजर इब्ने आदि और आदि इब्ने हातम मजमे के आगे आगे चले आ रहे हैं।
कहाँ जा रहे हैं?
मदीना।
मदीना? मगर मदीने में क्या हुआ है?
नहीं जानता, लेकिन अंदाजा लगा सकता हूं कि क्यों मरवान ने हमें इतनी उजलत के साथ मदीना बुलाया है और क्यों ये लोग इतने इश्तियाक से मदीने की तरफ रवाना हुए।
अच्छा, बताओ क्यों?
मेरा ख्याल है कि अबू सुफियान के बेटे का फरमान नाफिज हो गया है।
कौन सा फरमान?
हसन इब्न अली या कत्ल हो चुके हैं या इहतजार के आलम में हैं।
सरदारे बुजुर्ग, मेरा ख्याल है कि हमें अपनी तलवारें उठा लेनी चाहिए।
ये औरत कौन है?
ये वही औरत है जिसने हसन इब्न अली को जहर दी है, हसन इब्न अली की बीवी है।
उसे अपने हाल पे छोड़ दो। बुसर इब्ने अर्ताद कहाँ है?
रास्ते में है।
तुम्हारे सिपाही कहाँ हैं?
शहर दमिश्क के बाहर।
उम्मीद है कि उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन एहतियात से मुंतजिर रहो, मुमकिन है कि टकराव से बचना मुश्किल हो। अगर हसन इब्ने अली के साथी तलवार उठा लें तो तुम भी देर ना करो, तलवार का जवाब तलवार से दो। ये वही इत्तेफाक है